क्लास में हम चल रहे थे 21 जनवरी 1968।
ओम शांति। द वाणी ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 21 जनवरी 1968 वॉज गोइंग ऑन।
पहले पेज के मध्यान की हम बात कर रहे थे, जो बहुत फर्स्ट क्लास चलते हैं उन पर कहेंगे वृहस्पति की दशा।
एट द एंड ऑफ द मिडिल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट पेज द मैटर बीइंग नरेटेड वॉज दोज हू वॉक द पाथ ऑफ नॉलेज इन अ फर्स्ट क्लास वे विल बी सेट टू बी अंडर बृहस्पति की दशा, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर।
बृहस्पति की दशा,
हूज दशा, दैट इज इन्फ्लुएंस, इज इट, इट इज बृहस्पति इन्फ्लुएंस।
वृक्षपति भी कहते हैं,
ही इज ऑल्सो कॉल्ड वृक्षपति।
माना सारे वृक्ष का जो बीज है वो बीज कौन से वंश का होगा?
इट मीन्स दैट द वन हु इज द सीड ऑफ द एंटायर ट्री विल बिलोंग टू विच वंश, दैट इज डायनेस्टी।
सूर्यवंशी होगा,
ही विल बिलोंग टू द सन डायनेस्टी,
क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप ही आकर के शक्ति पर पहले पहले ज्ञान देते हैं।
बिकॉज द फादर द सन ऑफ नॉलेज हिमसेल्फ कम्स इन टू दिस वर्ल्ड एंड गिव्स नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल।
और जिस व्यक्ति को ज्ञान देते हैं वो ग्रहों में पहला ग्रह माना जाता है, उसको कहते हैं वृक्षपति या बृहस्पति।
And the person to whom he gives knowledge is considered to be the first among all the planets. He is called Vrikshapati or Brihaspati.
Nau grah hote hain na?
There are 9 planets, aren't there?
Number wise hote hain.
They are number wise.
Brahmano ki 9 puniya mani jati hain.
It is consider that there are 9 categories of Brahmins.
उन पुरियों की शुरुआत भी 9 ऋषियों से हुई।
Those categories were also started by 9 rishis, that is sages.
ऋषि कहा जाता है पवित्र को, और पवित्रता में भी नंबर वार ग्रेड से हैं।
Only the one who is pure is said to be a rishi. And even in purity, there are number-wise grades.
उनमें जो अव्वल नंबर ग्रेड है उसकी दशा है फर्स्ट क्लास बच्चों के ऊपर।
The first class children are under the influence of the one who is the number one grade among them.
बोला बृहस्पति की दशा तो कहेंगे।
It has been said it would certainly be said to be the influence of Brihaspati, that is Jupiter.
फिर अचानक ही माया का तूफान आ जाता है। जब बृहस्पति की दशा है तो माया का तूफान अचानक क्यों आ जाता है?
Then suddenly the storm of Maya comes. When there is the influence of Jupiter, then why do the storms of Maya come suddenly?
ये भी कहेंगे अपने अपने पूर्वजन्मों का हिसाब किताब।
इट विल ऑल्सो बी सेड टू बी द कर्मिक अकाउंट्स ऑफ वंस ओन पास्ट बर्थ्स।
त्रेसठ जन्मों में जैसी जैसी शेष या निष्पक्ष आत्माओं का संग किया है उनकी दशा बैठ जाती है।
As was the company of the elevated or degraded souls in the 63 births, so is the influence.
तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ये रील घूमती रहती है, अचानक दशा बदल जाती है।
So even here in the shooting period, this reel keeps rotating. Suddenly the influence changes.
परंतु ये दशा बदलने का निमित्त कौन?
But who is instrumental in changing this दशा?
ये दशा अचानक क्यों बदल जाती है? क्या जिम्मेवार कौन?
Why does this dasha change suddenly? Who is responsible for this?
बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्म में हमने ही कर्म किए और हमने ही संग का रंग बदला है।
बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। Whatever has been predetermined is being enacted. Nothing new is to be enacted. We ourselves have performed actions in 63 births and we ourselves have changed the color of the company.
तो जिन्होंने जो जैसा संग का रंग बदला है और संग के रंग से रंगीन हुए हैं वैसी ही दशा कर जाती है। तो अचानक माया का तूफान आ जाता है।
So, whoever has changed the color of the company in whatever form and has got colored by the company, so is the influence. So, suddenly, the storm of Maya comes.
नौ ग्रहों में से पहले ग्रह की दशा में है तो फर्स्ट क्लास चलती है और उसके बाद
When one is under the influence of the first planet among the 9 planets, then one walks the path of knowledge in a first class way and after that
Anya 8 grah jo girti kala ke hain, number 1 charti kala ke hain, unke sang ke rang mein aane se maya pakadti rehti.
When one gets colored by the company of the remaining 8 planets, which are the planets of the descending celestial degrees or number-wise ascending celestial degrees, Maya keeps catching them.
तूफान आ जाता है, कहते हैं बाबा, हमारी खुशी का नशा कुछ कम दिखाई देता है।
When the storm emerges, then they say, Baba, the intoxication of our joy seems to be a little less.
कुछ कम का मतलब क्या हुआ?
What is meant by a little less?
ये बहुत दशा नहीं गिर गई। सबसे नीचे ग्रह की दशा नहीं आ गई।
It means that dasha, that is the stage, has not fallen very much. It has not become the stage of the lowermost planet.
कुछ नीचे स्टेज में आ गई।
One has slipped to a little lower stage.
कमाई में भी ऐसे होता है।
It also happens like that while earning an income.
कमाई में भी दशाएं बदलती रहती है और ये तो अविनाशी कमाई है, इसमें भी दशाएं बदलती है.
While earning an income, the stage keeps changing and this is an imperishable income. In this also, the stage changes.
जब दशाएं बदल जाती है एकदम माया नीचे गिराई देती है तो कोई तो लिखते हैं कि बाबा हमने काला मुंह कर लिया।
When the state changes, when Maya makes us fall completely, then some write, Baba, we have blackened our face.
बुरा मुंह कैसे होता है और काला मुंह कैसे होता है?
How does a face become fair and how does a face become black?
गोरा मुंह होता है सतयुग आदि में जब संपूर्ण पवित्र बनते हैं।
The face becomes fair at the beginning of the golden age when one becomes completely pure.
और काला मुंह हो जाता है काले कलयुग में जब आखिरी ग्रह की दशा राहु की सब के ऊपर बैठती है।
And the face becomes black in the dark iron age when the influence of the last planet, that is Rahu, is cast on everyone.
In shooting period, जैसे जैसे जो जो जिन जिन ग्रहों की स्थिति में आते जाते हैं, प्रभाव में आते जाते हैं, वैसी वैसी दशा बदलती जाती है।
Then during the shooting period, precisely in the way in which one comes into the stage of or under the influence of any planet, the influence on them changes in the same way.
फिर कहते हैं बाबा क्षमा करो, हमने काला मुंह कर लिया। बाप कहेंगे ये तुम्हारे ऊपर सबसे नीच ग्रह की दशा बैठ गई।
Then they say, Baba, forgive us, we have blackened our face. The father would say, the lowermost planet has influenced you.
कौन सा है सबसे नीच ग्रह? राहु की दशा बैठ गई।
Which is the lowest planet? Rahu has influenced you.
सूर्य वंश होता है।
There is the sun dynasty.
सूर्य से उसका वंश चलता है। के बाद नंबर दो का ग्रह कौन सा होता है?
From the sun, his dynasty emerges. After that, which is the second planet?
है? के बाद चंद्रमा, और चंद्रमा को भी राहु दस लेता है।
After the sun is the moon, and Rahu influences even the moon.
तब ग्रस्ता है।
When does he influence it?
है? माया संपूर्ण चंद्रमा जब बनता है, बनने को होता है, तो माया ग्रहण कर लेती है अमावस्या के दिन।
When the moon becomes complete or is about to become such, then on the day when there is no moon, अमावस्या, माया eclipses.
टेढ़ा चंद्रमा है तो ग्रहण नहीं करता, संपूर्ण चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है।
When the moon is crooked, Maya does not eclipse. It eclipses the complete moon.
माना चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, या कोई भी वंश के हो।
It means that whether it is those who belong to the sun dynasty, whether it is those who belong to the moon dynasty or to any other dynasty,
ज्यादा रुस्तम बनते हैं तो माया उनको ज्यादा रुस्तम बन करके पकड़ती।
When they become Rustam, that is stronger, then Maya catches them in a stronger way.
इस सूर्यवंशियों के अलावा और जितनों का संग है, वो सब माया से भेंटा कराने वाले हैं।
Except for the Suryavanshis, the company of all others makes us meet Maya.
विकार में गिरना है ही राहु की दशा। पांच मार से नीचे गिराई देती।
Indulging in lust means the influence of Rahu. It makes us fall from the fifth floor.
और इस समय कलयुग के अंत में तो सारे विश्व पर राहु की दशा है।
And now at the end of the Iron Age, there is an influence of Rahu on the entire world.
क्यों?
Why?
सारे विश्व पर राहु की दशा क्यों है?
Why is the entire world under the influence of Rahu?
क्योंकि एक ज्ञान सूर्य के अलावा बाकी सब का संग का रंग गिराने वाला है।
It is because except for one sun of knowledge, the color of the company of all others causes downfall.
कोई उठाने वाला नहीं है।
Nobody uplifts anyone.
नौ ग्रहों में से सिर्फ एक सूर्य है। ज्ञान सूर्य शिव जो देवताओं के गुरु में प्रवेश करता है, सतगुरु।
Among the nine planets, it is only the sun of knowledge, Shiv, who enters into the guru of the deities, that is the Sadguru.
उसका संग का रंग तो निराला है।
The color of his company is certainly unique.
संग तारे
Good company takes you across and bad company drowns you.
बाकी जो भी ग्रह हैं, सब नंबरवार हैं।
all the other planets are number wise.
और सबकी दशा कुछ न कुछ गिरती कला में ले जाने वाली है.
And the influence of all of them causes downfall to some or other extent.
इसलिए बाप कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई.
That is why the father says one Shiv Baba and none other.
पहले पहले तुम सुख में जाते हो.
First of all, you experience happiness.
क्या?
What?
सत्यु के आदि में तुम पहले पहले संपूर्ण सुख में जाते हो तो कौन सी दशा बैठती है? वृक्षपति की दशा में आते हो.
In the beginning of the golden age, first of all, you experience complete happiness, then under whose influence will you be? You come under the influence of Vrikshapati.
Tum aate ho. Tum mana kaun?
You come. Who does you refer to?
Tum unse nahi kaha. Jo Satguru Nindaka Thao na paare ki list mein aate hain.
The ones who come in the list of those who cause the defamation of the Sadguru and do not achieve the destination are not called you. They become instrumental in causing the defamation of the Sadguru in their effort making life. So, what will be their fate in the end? Will they get some place?
या बेघर हो जाएंगे.
और विल दे बिकम बेघर दैट इज होमलेस.
धनी दोरी के बन नहीं सकेंगे.
दे विल नॉट बी एबल टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड.
और बाप को छोड़ करके चले जाएंगे.
एंड दे विल लीव द फादर एंड गो.
बचेंगे कितने?
हाउ मेनी विल रिमेन?
यानी के उपरांत समय में और शक्ति के आदि समय में एक वृक्षपति की दशा होगी.
Those who will be under the influence of one Vrikshapati in the end and in the beginning of the world will remain.
एक ही छत्र छाया के नीचे रहने वाले होंगे और कोई की छत्र छाया के नीचे नहीं होंगे.
The ones who will live under the canopy of one and will not be under the canopy of anyone else.
एक का प्रभाव उन सब के ऊपर होगा.
All of them will be influenced by one.
प्रभावित माना प्रजा. किसकी प्रजा?
Influenced means praja, that is subject. Whose praja?
ऊंचते ऊंच बनने वाला जो विश्व का मालिक है उसे एक ऊंची से ऊंची की प्रजा में आवेंगे.
They will be included in the praja, that is subjects of that highest on high one, who becomes the highest on high, who is the master of the world.
उन बच्चों से कहा है तुम अर्थात सामने बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले.
Those are called the children who have been addressed as you. You means those who study the knowledge sitting sanmukh, that is face to face.
सन्मुख के भी दो अर्थ हैं. कहने को इस स्थूल में सामने बैठते हैं, अंदर से बुखार भरा रहता है, विरोधाभास भरा रहता है.
देर आर टू मीनिंग्स ऑफ सन्मुख एज वेल. फॉर नेम सेक समवन मे बी सिटिंग फेस टू फेस. इनसाइड दे आर फुल ऑफ एंगर. दे आर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस.
उनको फिर बेहद में सन्मुख कहेंगे कि विमुख कहेंगे? उनको भी विमुख कहेंगे.
Then will they be said to be sitting sanmukh, that is face to face, in an unlimited sense, or will they be said to be sitting with their faces vimukh, that is turned away? They too will be called vimukh.
सामने बैठ करके ही जिनके विपरीत संकल्प चलते हैं.
The ones who have opposing thoughts while sitting face to face.
वो बाहर की दुनिया में जाकर के तो और ही विपरीत बुद्धि विनश्यंती बन जाते हैं.
They develop even more of an opposing intellect to the father and they get destroyed by going in the outside world.
और सदगुरु की निंदा कराने के पात्र बन जाते
एंड दे बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन कॉजिंग द डिफेमेशन ऑफ द सदगुरु.
तो अभी सारी दुनिया के ऊपर तो राहु की दशा है और तुम जो सनमुख बैठे बच्चे हो उनके ऊपर बृहस्पति की दशा है.
सो नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु एंड यू चिल्ड्रन हु आर सिटिंग फेस टू फेस आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बृहस्पति दैट इज जुपिटर.
फिर उनमें भी नंबर बार है, कोई 100% प्रभावित है एक बाप से और कोई फिर परसेंटेज में प्रभावित होते हैं.
Then they too are number wise. Some are under 100% influence of one father, whereas some are influenced percentage wise.
तुम बच्चों को तो वृक्षपति भगवान बैठ पढ़ाते.
The god वृक्षपति, that is the protector of the tree, sits and teaches you children.
ये कौन सा वृक्ष है? निराकारी वृक्ष है या साकारी मनुष्यात्मा का वृक्ष है या जड़ वृक्ष है?
Which tree is this? Is it an incorporeal tree or is it a tree of corporeal human souls or is it a physical tree?
कौन सा वृक्ष है?
Which tree is it? Someone said it is a tree of incorporeal souls.
निराकारी आत्माओं के वृक्ष का बीज कौन होता है? है? और मनुष्य आत्माओं के बीज का वृक्ष कौन सा? वो वृक्ष का बीज कौन सा होता है?
Who is the seed of the tree of incorporeal souls and who is the seed of the tree of human souls? Someone said प्रजापिता.
और प्रजापिता में वो निराकार शिव आया हुआ है तब उसे कहते हैं वृक्षपति.
एंड दैट इनकॉर्पोरियल शिव हैज कम इन प्रजापिता देन ही इज कॉल्ड वृक्षपति.
तब उसको जानते हैं कि ये वृक्षपति है, उससे पहले कोई जानता भी नहीं.
देन पीपल कम टू नो दैट ही इज द वृक्षपति. प्रायर टू दैट Nobody even knows him.
तो बोला अभी तुमको वृक्षपति भगवान बैठ पढ़ाते.
So it has been said, now God वृक्षपति sits and teaches you.
भगवान किसको कहा जाता है?
Who is called God?
जो सारी शक्ति में सबसे जास्ती भाग्यवान होने के कारण भाग्यशाली रथ कहा गया.
द वन हु हैज बीन टर्म्ड द लकी चैरियट बिकॉज ऑफ बीइंग द मोस्ट फॉर्चुनेट वन इन द एंटायर वर्ल्ड.
21 जनवरी शक्ति वाणी का दूसरा पेज.
द सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 21 जनवरी 1968.
बच्चे अपनी अवस्था से खुद भी समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन से ग्रह की दशा है.
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच प्लैनेट वी आर.
9 ग्रह होते हैं, 9 ऋषि होते हैं, उनसे बनने वाले 9 कुल होते हैं.
देयर आर 9 प्लैनेट्स, देयर आर 9 स्टेजेस, देयर आर 9 क्लैंस दैट इमर्ज फ्रॉम देम.
ब्राह्मणों की 9 पुरियां कही जाती.
देयर आर सेड टू बी 9 कैटेगरीज ऑफ ब्राह्मिन्स.
और वो जो 9 पुरियां हैं उनके अनुसार संसार में 9 धर्मों की स्थापना हुई है.
एंड 9 रिलीजियंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोस 9 कैटेगरीज.
और 9 धर्मों के 9 मुख्य धर्म संस्थापक हैं.
and there are 9 main religious founders of the 9 religions.
तो बच्चे अभी संगम युग में समझ सकते हैं कि हम किसके प्रभाव में.
सो नाउ इन द कॉन्फ्लुएंस एज द चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड अंडर हुज इन्फ्लुएंस वी आर.
जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और कोई की बात नहीं मानेगा.
टू विच एवर रिलीजन वन बिलोंग्स ही विल ओनली एक्सेप्ट द वर्जन्स of the person belonging to that religion and he will not accept the versions of anyone else.
साक्षात भगवान ही क्यों न उतर आए. अगर दूसरे धर्म का होगा तो भगवान की भी बात नहीं मानेगा.
Even if God himself descends in front of him, if one belongs to another religion, then he will not accept even the versions of God.
तुम समझ सकते हो हमारे ऊपर वृक्षपति की दशा है, राहु की दशा है, या कौन से ग्रह की दशा है?
So you can understand, are we under the influence of वृक्षपति? Are we under the influence of राहु? और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच प्लैनेट आर वी?
हम बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं या नहीं है?
हैव वी फाउंड अ प्लेस इन बाबाज हार्ट और नॉट?
अगर बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं,
इफ वी आर इन बाबाज हार्ट,
तो कौन सी दशा कहेंगे?
देन अंडर हुज इन्फ्लुएंस विल वी बी सेट टू बी?
तो कहेंगे वृक्षपति की दशा.
In that case, it would be said the influence of वृक्षपति.
जानते हैं ये बाबा ही तख्त नशीन बनेगा.
They know this Baba alone will occupy the throne.
और बाबा के दिल पर हम चढ़े हुए हैं.
And we are in Baba's heart.
हम बाप के दिल पर चढ़े तो जरूर बाप के तख्त पर भी बैठेंगे.
When we have climbed on the father's heart, then we will certainly sit on the father's throne as well.
दिल तख्त है यहाँ संगम में और राज्य तख्त होगा वहाँ नई दुनिया में.
Here in the confluence age, it is the heart throne, and there in the new world it will be the throne of kingship.
Koi samajhte hain bhal hum bacche to hain, baap ke bacche to zarur hain, suryavanshi to zarur hain, lekin baap ke dil par nahi chadhe hue.
Some feel although we are the children, we are certainly the children of the father. We are certainly Suryavanshis, but we have not climbed onto the father's heart.
बाप के दिल की जो आशा है हमारे ऊपर, वो आशा को हम पूरा नहीं कर पाते.
We are not able to fulfill the hopes of the father's heart, which he has pinned on us.
तो समझेंगे कि हम दिल तख्त पर नहीं बैठे, बच्चे तो हैं.
So they will realize that we are not sitting on the heart throne. They are indeed the children, so they can understand.
माना सूर्यवंशी प्रजापद में तो आवेंगे, परंतु कुछ काम नहीं करके दिखावेंगे.
It means that they will definitely achieve the position of subjects in the Sun dynasty, but they will not perform any task.
ईश्वर बाप की जो अपेक्षा है बच्चों से,
द एक्सपेक्टेशन दैट गॉड फादर हैज फ्रॉम द चिल्ड्रन इज दैट
कि बच्चे सर्वसेवुल बने, बाप का नाम बाला करें, वो काम करके नहीं दिखाते.
द चिल्ड्रन शुड बिकम सर्विसेबल, दे शुड ब्रिंग फेम टू द फादर, दे डू नॉट परफॉर्म दैट टास्क एंड शो देमसेल्व्स एज एन एग्जाम्पल.
इनको खिलाओ पिलाओ, परंतु काम कुछ भी नहीं करेंगे.
give them food and water, but they will not perform any task.
बाप के घर में रहते हैं, रोज बाप के घर में पढ़ाई भी पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं.
They live in the father's house. They even study every day in the father's house. They eat, they drink.
तुम संग खाओ, तुम संग खेलो, तुम संग सासों सास साथ निभाओ. करते सब कुछ है, प्राप्ति सब कुछ है.
I shall eat with you, I shall play with you, and I shall remain in your company in every breath. They do everything. Everything is available to them.
लेकिन जो करना है ईश्वरीय सेवा, वो सेवा नहीं कर पाते.
But they are unable to do the godly service that they should do.
तो क्या बनेंगे? पिछाड़ी में जाते. पिछाड़ी में जाकर नौकर चाकर बन जाएंगे.
Therefore, what will they become in the end? In the end, they will become servants.
यहाँ मेहनत नहीं करेंगे, बाप की छत्र छाया में रहकर, तो फिर वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी.
If they do not work hard here by living under the protection of the father, then they will have to work hard there.
क्या?
What?
दुनिया की नजरों में तो ये दिखाई देते हम बाप के बन गए, हम ईश्वर की औलाद बन गए, अथवा हम सरेंडर हो गए, संपूर्ण समर्पित हो गए.
In the eyes of the world, they appear to have become the children of the father. We have become the children of God, or we have surrendered. We have completely surrendered.
परंतु अंदर से समझते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन बाप के कुछ काम नहीं आते.
But inside they feel we eat, we drink, we sleep, but we are of no use to the father.
तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वहाँ उसका रिजल्ट क्या होगा?
So what will be the result? What will be the result there?
वहाँ उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी.
They will have to work very hard there.
कहाँ?
Where?
सतयुग में. सतयुग में कोई मेहनत होती है क्या?
In the golden age. Will there be work in the golden age?
सारी मेहनत प्रकृति मुहैया करती है.
All the work is done by nature.
तो सतयुग त्रेता की बात नहीं है, कहाँ की बात है?
So, it is not a question of the golden age or the silver age. To which time does it pertain?
त्रेसठ जन्म द्वापर कलयुग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी.
One will have to work very hard in the 63 births of the copper age and the iron age.
झट पूछूंगा, तुमने कितनों को आप समान बनाया है?
I will immediately ask them, how many souls have you made equal to yourselves?
Brahmani bahuton ko mehnat karke le aati hai.
Brahmani works hard to bring many here.
Brahmani samajhti hai ki baap ke samne le jayenge to baap inko refresh karenge.
Brahmani thinks if I take them in front of the father, then the father will refresh them.
क्योंकि बाप तो सुप्रीम टीचर है ना?
बिकॉज द फादर इज द सुप्रीम टीचर, इजंट ही?
पहले पहले है सुप्रीम नॉलेजफुल गॉड.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सुप्रीम नॉलेजफुल गॉड.
और सेकंड नंबर में फिर ये है.
एंड एट द सेकंड नंबर इज दिस वन.
कौन?
हु?
यह कह के किसकी तरफ इशारा करते थे? हैं? ब्रह्मा की तरफ इशारा करते.
Whom did he point at by saying this one? He used to point towards Brahma.
पहले नंबर में सुप्रीम नॉलेजफुल.
At the first number is the supreme knowledgeful one.
नॉलेजफुल कब कहा जाए?
When will one be called knowledgeful?
बिंदु रूप में है, सिर्फ बिंदु है, जिसका नाम शिव है, तब कोई नॉलेजफुल कहेगा.
if he is in the form of a point, if he is just a point whose name is Shiv, then will someone call him knowledgeful?
या साकार में प्रवेश करके ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है.
और इज ही कॉल्ड द ओशन ऑफ नॉलेज नॉलेजफुल व्हेन ही एंटर्स द कॉर्पोरियल मीडियम.
जब साकार में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तब नॉलेजफुल कहे जाते हैं. और सेकंड नंबर में है ये ब्रह्मन.
व्हेन ही एंटर्स द कॉर्पोरियल, when he narrates the knowledge, then he is called knowledgeful. And in the second number there is this Brahma.
Brahma mana? Dada Lekhraj, jinka 84va janma hai Brahma, jo dharana mein gyan dikhata hai.
Brahma meaning Dada Lekhraj, whose 84th birth is Brahma. The one who shows knowledge in his dharana, that is inculcations.
Vacha mein gyan nahi hai. Vacha kiski chalti hai unke dwara?
The knowledge is not just in words. Who speaks through him?
Shiva Jyoti Bindu ki vacha hai.
The words are of the point of light Shiv.
Isliye sirf dharana dharana matra dikhate hain. ब्रह्मा में बड़ी माँ सिखाओ.
That is why he just demonstrates the inculcation of virtues. The inculcation of a senior mother is in Brahma.
फिर बाचा के रूप में कब आते हैं?
Then when does he take the form who speaks?
एक ऐसा भी रूप है जिसकी बाचा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता.
There is one such form too, whom nobody can challenge in the matter of speech.
वो देवता है या देवी है? कौन सी देवी है? वाक देवी. वाक माना वाचा की देवी.
Is that form देवता, that is a male deity, or devi, that is a female deity? Someone said she is a devi. Which devi is she? वाक देवी. Devi of vak, that is speech.
क्या नाम है?
What is the name?
Jagadamba Saraswati.
Jagadamba Saraswati.
Oi Jagadamba, jab tamasi banti hai, sangar karani banti hai, to jeev bahar dikhai padti hai.
When the same Jagadamba becomes degraded, when she becomes a destroyer, then her tongue emerges out.
उसके मुकाबले कोई बातें में तीखा नहीं हो सकता.
There cannot be anyone sharper than her in words.
वो भी माता है.
She is also a mother.
जैसे जगत का पिता है, वैसे जगत की माता है. और
just as there is Jagat Pita, that is the world father, in the same way there is the mother of the world.
Brahma ka roop jo purush tan hai wo nahi pooja jata hai.
And the form of Brahma who has a male body is not worshipped.
Parantu mata ke tan mein jo atma pravesh karti hai to wo tan pooja jata hai.
But the soul which enters into the body of a mother, that body is worshipped.
Jagadamba ke roop mein bhi pooja jata hai aur asur sangharani karani ke roop mein bhi, mahakali ke roop mein bhi pooja jata hai. To second mein, second number mein ho gayi ye mata.
It is worshipped in the form of Jagadamba as well as in the form of the destroyer of demons, Mahakali. So, in the second number, there is this mother.
ये बड़ी wonderful बातें हैं.
These are very wonderful matters.
मनुष्य तो एक भी बात नहीं जानती.
Human beings do not know even a single thing.
एक भी बात भी नहीं जानते और एक ही बात नहीं जानते.
They do not know even a single thing. And they do not know just one thing.
कौन सी बात नहीं जानते?
विच मैटर डू दे नॉट नो?
कौन सी बात नहीं जानते स्पेशल?
विच स्पेशल थिंग डू दे नॉट नो?
एक स्पेशल बात है जो मनुष्य नहीं जानते।
देयर इज वन स्पेशल मैटर विच ह्यूमन बींग्स डू नॉट नो।
पहले हम बच्चे भी नहीं जानते थे हैं? हाँ जी।
अर्लियर विच चिल्ड्रन ऑल्सो डिड नॉट नो। समवन सेड गॉड ऑफ गीता। यस,
ये बात नहीं जानते कि ईश्वर आकर के कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं।
दे डू नॉट नो हाउ गॉड कम्स एंड एस्टैब्लिशेस द न्यू वर्ल्ड।
नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, शक्ति का युग है।
द गोल्डन एज इज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड। इट इज एन एज ऑफ ट्रूथ।
शक्ति का युग कौन स्थापन करेगा है? अरे राम राज्य कौन स्थापन करेगा?
Who will establish the age of truth? अरे who will establish the kingdom of Ram?
राम ही राम राज्य स्थापन करेगा। रावण राज्य कौन स्थापन करेगा? रावण ही रावण राज्य स्थापन करेगा।
राम himself will establish the kingdom of Ram. Who will establish the kingdom of Ravan? Ravan himself will establish the kingdom of Ravan.
तो सत्य युग अर्थात सत्य खंड कौन बनाएगा?
सो हु विल एस्टैब्लिश सत्युग सच खंड दैट इज द लैंड ऑफ ट्रूथ।
जो कलयुग के अंत में सब झूठे हो जाते हैं, एक भी सच्चा नहीं होता।
एट द एंड ऑफ द आयरन एज एवरीवन बिकम्स फॉल्स, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन रिमेन्स ट्रू।
तब बाप आते हैं, चित आनंद कहा जाता है, वो चैतन्य में आता है।
देन द फादर कम्स, ही इज कॉल्ड सत चित आनंद, दैट इज ट्रू लिविंग ब्लिसफुल। ही कम्स इन अ लिविंग फॉर्म।
जड़ में आता है, चैतन्य रूप धारण करता है, चैतन्य में आता है, आनंद देने वाला है। लेकिन पहला गुण क्या है?
Does he come in a non-living thing or does he assume a living form? He comes in a living form. He gives bliss, but what is his first virtue? It is truth.
अंग्रेज लोग भी कहते हैं God is truth.
Englishmen also say God is truth.
भगवान क्या है? शक्ति को ही God कहा जाता है। झूठ का नाम निशान भी नहीं।
What is God? Truth is called God. There is no name or trace of falsehood.
और सत्य भी, और सत्य ही कल्याणकारी होता है।
And truth alone is beneficial.
झूठ कभी कल्याणकारी हो नहीं सकता।
Falsehood can never be beneficial.
ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं।
दीज आर वेरी वंडरफुल मैटर्स।
बाप राजयोग सिखलाते हैं।
द फादर टीचर्स राजयोग।
तो बाप से जो कुछ भी प्रश्न पूछते हैं,
सो हूएवर पुट्स व्हाटएवर क्वेश्चंस टू द फादर,
जरूर वो कुछ भी जानते ही नहीं।
दे सर्टेनली डू नॉट नो एनीथिंग एट ऑल।
क्या है? जो बाप से प्रश्न पूछते हैं, उससे क्या रिजल्ट? जरूर वो कुछ भी जानते ही नहीं।
What is the result of those who ask the father questions? Certainly, they do not know anything at all.
पहले तो अपने को ही नहीं जानते कि जब हमें ज्ञान नहीं मिला था तो हम कुछ जानते थे क्या?
फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट नो themselves. व्हेन वी हैड नॉट obtained नॉलेज डिड वी नो एनीथिंग?
पत्थर बुद्धि थे या पारस बुद्धि थे? पत्थर बुद्धि थे।
डिड वी हैव अ पत्थर बुद्धि दैट इज स्टोन लाइक इंटेलेक्ट और अ पारस बुद्धि that is Paras-like intellect. Paras is believed to be a mythical stone which is said to convert iron into gold by mere touch. We had a stone-like intellect.
बाप आए तो कुछ ज्ञान की आँख तीसरा नेत्र खुला.
When the father came, then the eye of knowledge, the third eye opened a little.
अब बाप से ही प्रश्न पूछते तो क्या साबित होता है.
Now we ask the father questions, so what does it prove?
ये अभी बाप को ही नहीं जाना है.
It proves that they have not yet known the father at all.
Baap baap hai sari srishti ka.
The father is the father of the entire world.
Khuda kaha jata hai.
He is called Khuda.
To khud hi sari baat batate hai. Ya tum kuch jante ho. Baap se kya prashn puchhenge.
So does he himself narrate everything or do you know? What questions will you put to the father?
तुम समझाएंगे? प्रश्न पूछने वालों को तुम कुछ समझाएंगे? तो उनकी बुद्धि में कैसे आएगा?
If you explain something to those who put questions, then how will it strike their intellect?
है? आएगा? तुम समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में नहीं आएगा. कितनी मेहनत लगती है.
Will it strike their intellect? If you explain, then it will not strike their intellect. It involves so much hard work.
शिव बाबा जो करनी घोर ब्राह्मण होकर के अभी आए हैं.
शिव बाबा has come in the form of a करनी घोर ब्राह्मण now.
इस समय.
At present.
कैसे ब्राह्मण होकर के आए? करनी घोर ब्राह्मण क्या होता है?
What kind of Brahmin has he come as? What is this करनी घोर ब्राह्मण?
जब मरते हैं तो जो कुछ भी पुराना धुराना जो कुछ भी होता है वो सब करनी घोर ब्राह्मण को दे देते हैं.
The students say something. When someone dies, then whatever old things that used to belong to him are given to the करनी घोर ब्राह्मण.
बिचारों के पास है ही क्या?
What do the poor children have?
है? पुराना दुराना शरीर होता है 84वें जन्म में.
They have an old body in the 84th birth.
पुरानी दुरानी बुद्धि होती है दम प्रधान.
The intellect is old and impure.
और धन भी? तामसी दुनिया का तामसी तरीके से कमाया हुआ धन होता है.
And the wealth is also the wealth of the degraded world, earned through impure means.
भक्ति मार्ग में ईश्वर से दान पुण्य करते हैं ना?
In the path of worship, people give donations and perform virtuous acts in the name of God, don't they?
अभी तो ईश्वर सन्मुख है भक्ति मार्ग में सन्मुख होता है क्या?
Now God is face to face. In the path of worship, is he sanmukh, that is face to face?
है? तो किसके थ्रू करते हैं? इनडायरेक्ट दान करते हैं ईश्वर के लिए गुरुओं के द्वारा.
So through whom do they give donations? They give donations indirectly for God through gurus.
और अभी? अभी तो सन्मुख है तो क्या करना चाहिए?
And now? Now he is here face to face. So what should be done?
है? जब सन्मुख है तो जरूर सन्मुख करेंगे तो जास्ती प्राप्ति होगी.
When he is face to face, then certainly those who perform deeds face to face will achieve more attainments.
यह सन्मुख आने के बावजूद भी गुरुओं का आसरा लेकर के करेंगे.
Or if someone performs deeds with the support of the gurus in spite of coming face to face.
या गुरुओं से प्रभावित होकर के चलेंगे.
Or if one remains influenced by the gurus.
तन अर्पण करेंगे धन अर्पण करेंगे समय अर्पण करेंगे, देह के संबंधी अर्पण करेंगे गुरुओं के थ्रू.
इफ वन सरेंडर्स द बॉडी, इफ वन सरेंडर्स द वेल्थ, इफ वन सरेंडर्स द टाइम, इफ वन सरेंडर्स द रिलेटिव्स ऑफ द बॉडी थ्रू द गुरुज,
तो प्राप्ति में क्या फर्क पड़ जाएगा?
देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द अटेनमेंट?
किसकी छत्र छाया के तले माने जावेंगे? गुरुओं की छत्र छाया के तले माने जावेंगे.
अंडर हुज प्रोटेक्शन छत्र छाया विल दे बी कंसिडर टू बी? दे विल बी कंसिडर टू बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुरुज.
फिर कौन सी दशा बैठेगी? जरूर आगे पीछे राहु की दशा बैठ जाती है.
Then under whose influence will they be? Certainly they will be influenced by Rahu at some point of time.
अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग में ईश्वर से करते थे.
Now you understand that in the path of worship we used to perform deeds in the name of God.
तो ईश्वर को तो मिलता नहीं था.
But God did not receive anything.
किसको मिलता था? गुरुओं को मिलता था. गुरु अपनी अकल के अनुसार उसको काम में लगाते थे.
Who were the ones who used to receive it? The gurus were the ones who received it. Gurus used to invest whatever they received in accordance with their wisdom.
गुरु लोग स्वार्थी होते हैं, स्वके रथ के लिए पहले सोचेंगे.
आर द गुरु स्वार्थी, दैट इज सेल्फिश? विल दे थिंक अबाउट देयर स्वार्थ, ओन चैरियट, दैट इज बॉडी फर्स्ट?
यह परमार्थी बाप के समान होते हैं.
और आर दे इक्वल टू द परमार्थी, दैट इज बेनिफैक्टर फादर?
सेवा बाप को तो अपना रथ ही नहीं है, तो स्वार्थी कैसे होगा?
फादर शिव डज नॉट हैव हिज ओन चैरियट एट ऑल, सो हाउ विल ही बी सेल्फिश?
स्वार्थी कौन होते हैं? सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति.
हु आर द वंस हु आर सेल्फिश? सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति. इट इज द मैनर ऑफ द डेटीज, मेन, ह्यूमन बींग्स, सेजेस, एवरी वन लव्स वेन देर इज अ सेल्फिश मोटिव.
चाहे सुर हो, असुर हो, ऋषि मुनि हो, धर्म पिताएं हो, सबको अपना रथ होता है.
वेदर इट इज द डेटीज, डेमन्स, sages and saints, religious fathers, everyone has his own chariot.
धर्म पिताएं परम धाम से आते हैं, अपना रथ तो लेकर नहीं आते. आते हैं तो उनको स्वार्थी कहे या परमार्थी कहे? परमार्थी.
When the religious fathers come from the soul world, they do not bring their chariot, do they? So, will they be called the ones who are selfish or ones who are benefactors? Someone said, benefactor. Benefactors?
जिस रथ में भी प्रवेश करते हैं, उस रथ में उनका लगाव लग जाता है.
In whichever body they enter, they develop attachment for it.
लगाव लगता है कि नहीं? लगाव लग जाता है. अटैचमेंट हो जाता है.
डू दे डेवलप अटैचमेंट और नॉट? दे डू डेवलप अटैचमेंट.
और ये लगाव की बीमारी सारा सत्यानाश कर देती है.
एंड दिस डिजीज ऑफ अटैचमेंट ब्रिंग्स अबाउट टोटल रूइन.
कोई भी देहदारी में लगाव हुआ, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे संगम युग हो, तो लगाव की बीमारी पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देती.
इफ देर वॉज अटैचमेंट टूवर्ड्स एनी बॉडीली बींग, वेदर इट वॉज इन द कॉपर एज, वेदर इट वॉज इन द आयरन एज, वेदर इट वॉज इन द कॉन्फ्रेंस एज, द डिसीज ऑफ अटैचमेंट डज नॉट अलाउ वन टू प्रोग्रेस इन मेकिंग एफर्ट.
तो भक्ति मार्ग में ईश्वरार्थ करते हैं, उसका हिसाब किताब कैसे चलता था।
सो इन द पाथ ऑफ वर्शिप व्हेन वन यूज्ड टू टेक एक्शन इन द नेम ऑफ गॉड, हाउ वॉज द अकाउंट मेंटेन्ड,
कैसे चलता था है? अच्छा हिसाब किताब कैसा चलता था, अच्छा चलता था या बुरा चलता था है? बुरा चलता था।
हाउ वॉज इट मेंटेन्ड? ऑल राइट, हाउ वॉज द अकाउंट मेंटेन्ड? वॉज इट गुड और वॉज इट बैड? समवन सेड इट यूज्ड टू बी बैड, इट यूज्ड टू बी बैड।
दुनिया ऊपर तो उठी नहीं, दुनिया नीचे गिर गई।
द वर्ल्ड डिड नॉट बिकम एलिवेटेड, द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डाउनफॉल।
जिनके थ्रू ईश्वर अर्थ दिया वो खुद भी नीचे गिर गए।
द वंस थ्रू हुम समथिंग वॉज गिवन इन द नेम ऑफ गॉड ऑल्सो मेट विद डाउनफॉल।
हरे चित्ती धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई।
दैट इज द गुरु हु डज नॉट लिबरेट हिज डिसाइपल्स फ्रॉम सोरोज बट असर्प्स हिज वेल्थ गोज टू हेल।
बहुत करोड़पति निकलते हैं ज्ञान में चलने वाले, अंत में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे।
मेनी मिलियनेयर्स इमर्ज इन द पाथ ऑफ नॉलेज, विल दे इमर्ज इन द एंड और नॉट? दे विल इमर्ज।
उनका करोड़ और अरब भगवान बाप लेंगे क्या है? नहीं लेंगे। और अभी
विल गॉड फादर एक्सेप्ट देयर मिलियंस एंड बिलियंस? समवन सेड नो, ही विल नॉट टेक देम। एंड नाउ
अभी जो गुरु लोग बैठे हैं बीच में, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं।
डू द गुरुज हु आर नाउ सिटिंग इन बिटवीन टेक और नॉट? दे डू टेक।
तो जो लेते हैं उस लेन देन का हिसाब किताब भगवान के ऊपर चढ़ता है या लेने वाले के ऊपर चढ़ता है?
सो द वंस हु टेक, डज गॉड बिकम इंडेप्टेड बिकॉज ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस और डज द वन हु टेक्स बिकम इंडेप्टेड?
जिससे धन लिया और उसका कल्याण नहीं कर पाए।
If wealth was taken from some soul and he was not benefited,
वो आत्मा सत्युग में न जा पाए।
If that soul will not be able to go to the golden age,
चलो सत्युग के दूसरे तीसरे चौथे जन्म में आ जाए।
All right, he may come in the second, third or fourth birth of the golden age.
तो दुर्गति के निमित्त बने या सदगति बने?
Then did they become an instrument in bringing about degradation or true salvation? Many said degradation.
अरे सत्युग में पहुंच गए, ये दुर्गति क्यों? वो तो कहते भी हैं 3000 देंगे तो त्रेता में आवेंगे, 13000 देंगे तो सत्युग में आ जाएंगे।
अरे they have reached the golden age. Then why degradation? Someone said, according to the goal. Yes, they even say, if you give 3,000, then you will come in the silver age. If you give 13,000, you will come in the golden age.
तो जो रखवाले होते हैं उनका स्वार्थ रहता है।
So the ones who have a chariot are selfish.
और तो बाप का कोई स्वार्थ नहीं है।
And this father does not have any selfish motive.
तो यहाँ तुम सनमुख ईश्वर को देते हो तो तुमको रिटर्न मिल जाता है।
So here you give face to face to God and you get the return.
और भक्ति मार्ग में तो एक जन्म के लिए रिटर्न मिलता है और यहाँ तो 21 जन्म के लिए भी देते हैं और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाते
हैं। एंड इन द पाथ ऑफ वर्शिप यू गेट द रिटर्न फॉर वन बर्थ एंड हियर ही गिव्स यू द रिटर्न फॉर 21 बर्थ्स टू एंड ऑन द बेसिस ऑफ 21 बर्थ्स देयर इज एन अकाउंट ऑफ 63 बर्थ्स एज वेल।
तो उसको देना थोड़े ही कहेंगे, दिया या लिया? लिया।
सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड गिविंग। डिड यू गिव और टेक? यू टुक।
ईश्वर कोई कंगाल थोड़े ही है, ईश्वर कंगाल है नहीं, अरब पति करोड़ पति है।
गॉड इज नॉट पुअर। इज गॉड पुअर? समवन सेड नो। नो, ऑल राइट। इज ही अ मिलियनेयर? अ बिलियनेयर?
ईश्वर आते हैं तो क्या लेकर के आते?
व्हेन गॉड कम्स व्हाट डज ही ब्रिंग विथ हिम?
ज्ञान लेके आते हैं। जिसमें आते हैं वो कंगाल होता है।
समवन सेड नॉलेज। ही ब्रिंग्स नॉलेज। द वन इन हुम ही कम्स इज ही पुअर?
यार लखपति करोड़पति अरबपति होता है, कंगाल होता है।
और लखपति दैट इज ओनर ऑफ 100,000 rupees और मोर, अ मिलियनेयर, अ बिलियनेयर एट दैट टाइम ही इज पुअर।
तो जिसमें आते हैं,
सो द वन इन हुम ही कम्स,
तो क्या कहेंगे? ईश्वर कंगाल है या करोड़पति है? हैं? क्या कहेंगे?
वॉट विल वी से? इज गॉड पुअर और इज ही अ मिलियनेयर? वॉट विल वी से?
अरे कंगाल और करोड़पति, साहूकार और गरीब कब कहा जाए?
अरे व्हेन इज इट दैट समवन इज कॉल्ड पुअर और अ मिलियनेयर, प्रॉस्पेरस और पुअर?
जब साकार में आए?
इट इज व्हेन ही कम्स इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म।
तो जिस साकार में आते हैं, बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो कंगाल रूप में होते हैं या धनवान होते हैं? गरीब होते हैं।
सो द कॉर्पोरियल मीडियम इन विच द फादर कम्स and is revealed, is he in the form of a poor person or a prosperous person? Someone said, poor. Is he poor?
अरे बाप की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान धन।
अरे what is the property of the father? The wealth of knowledge.
ये ज्ञान के रतन तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे, अर्थात जिसकी बुद्धि में जितना जास्ती ज्ञान होगा वो दुनिया का उतना बड़ा धनवान बन जाएगा। प्रैक्टिकल बातें हैं।
दीज जेम्स ऑफ नॉलेज विल बिकम योर ट्रू जेम्स, दैट इज टू द डिग्री दैट देर इज नॉलेज इन वंस इंटेलेक्ट, टू दैट डिग्री वन विल बिकम रिच इन द वर्ल्ड। दीज आर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स।
तो धन देने वाला कंगाल हुआ या साहूकारों का साहूकार हुआ?
So, is the one who gives the wealth poor or the richest of the rich? Everyone said, he is the richest one.
Ishwar kangal thode hi hai.
So, it has been said, Ishwar, that is God, is not a beggar.
Uska naam kya diya? Ishwar. Ishwar mana? शासन करने वाला, और वरमाना शेष के शेष से शासन करने वाला।
What was he named? ईश्वर, God. ईश means one who governs, and वर means the one who governs in the most elevated manner.
कितने जन्म होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म।
At the most, how many births are there? There are 84 births.
84 जन्मों में जो सबसे पहला जन्म है उसमें किसका राज्य होता है? नारायण का राज्य होता है।
इन द फर्स्ट बर्थ अमंग द 84 बर्थ्स हुज किंगडम एग्जिस्ट्स, द किंगडम ऑफ नारायण एग्जिस्ट्स।
एक नारायण ही ऐसा सच्चा साहूकार है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानी नहीं है, बाकी सब आपकी ग्लानी है।
Narayan alone is one such truly prosperous person who has not been defamed even in the scriptures. Everyone else has been defamed.
तो वो दाता होगा या कोई से लेता होगा?
So will he be a giver or does he take from anyone?
माना जिस तन में आते हैं वो भी इतना पुरुषार्थी होता है कि कोई के सामने हाथ पसारना या मांगना पसंद ही नहीं हो सकता.
It means that the body in which he comes is also such an effort maker that he does not like to spread his palm in front of anyone or to seek anything at all.
वो तो देने वाला है, लेने वाला नहीं है.
He is a giver. He is not the one who takes.
वो तो 100 गुना रिटर्न कर देते हैं.
He gives 100 times in return.
ये भी पहले से ही ड्रामा में नूद है. ये बना बनाया बेहद का ड्रामा है.
This is also predetermined in the drama. This is an unlimited drama which is predetermined.
इस बने बनाए बेहद के ड्रामे को कोई नहीं जानते हैं. वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है एक्यूरेट.
Nobody knows this unlimited drama which is predetermined. The history and geography of the world repeats accurately.
क्या जिस आत्मा का जिस जन्म में जो पार्ट है हर कल्प में वह आत्मा वो ही पार्ट बजाती है.
What? Whichever soul has whatever part in whichever birth, that soul plays the same part in every cycle.
आत्माओं की बात छोड़ो, इस सृष्टि का जो भी अणु अणु है जहाँ से साइकिल लगाना शुरू करता है पूरा कल्प पूरा होने के बाद फिर वहीं पहुँच जाता है.
लीव असाइड द मैटर ऑफ सोल्स विच एवर एटम एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड द प्लेस फ्रॉम वेयर इट बिगिंस इट्स साइकिल. After the completion of a kalp, it reaches the same place again.
दुनिया का महाविनाश होगा, इतनी भारी उथल पथल होगी. उस उथल पाथल में जो जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा. फिर नए सिरे से चक्कर शुरू करेगा.
There will be mega destruction, that is महाविनाश of the world. Such a big upheaval, that is uthal pathal, will take place. In this upheaval, whatever has come from wherever, it will reach the same place again. It will start the cycle afresh once again.
So, sab kuch drama mein nood hai.
So, everything is predetermined in the drama.
Accurate history geography repeat hoti hai.
The history and geography repeats accurately.
जिसको जिसको तुम देखते हो अर्थात जो भी तुम देखते हो सबका ड्रामा में पार्ट.
Whosoever you see, that is whatever you see, everyone, everything has a part in the drama.
ऐसे नहीं कि चैतन्य मनुष्य आत्माओं का ही पार्ट है कि कीड़े मकोड़ों मक्खी मच्छरों का पार्ट नहीं है, उनका भी पार्ट है.
इट इज नॉट द केस दैट देर इज ओनली अ पार्ट दैट इज रोल फॉर लिविंग ह्यूमन सोल्स और दैट देर इज नो पार्ट फॉर इंसेक्ट्स स्पाइडर्स फ्लाइज एंड मस्किटोज दे टू हैव अ पार्ट.
और जो मिट्टी का एक एक कण तुम देखते हो उसका पार्ट नहीं है, उसका भी पार्ट.
और दैट इट इज नॉट द केस that every particle of the soil you see does not have a part, it also has a part.
ये भी धीरे धीरे समझना है. फट से कोई की बुद्धि में ये बात बैठ नहीं सकती.
This should also be understood slowly. This matter cannot fit into anyone's intellect straight away.
और समझाने वालों में भी नंबरवार होते हैं.
And the ones who explain are also number wise.
कम समझते हैं तो कम समझा सकते हैं, जास्ती समझते हैं तो जास्ती गहराई में समझा सकते हैं.
Those who have less understanding can explain in less detail. Those who understand more can explain in more depth.
हर एक की अपनी अपनी अवस्था है.
Everyone has his own stage.
कोई थर्ड क्लास ब्रह्मा कुमारी किसी अच्छे पढ़े लिखे को मिल जाती है.
If an educated person comes into contact with a third class Brahma Kumari,
तो उस पढ़े लिखे आदमी के प्रश्नों का पूरा रिस्पॉन्ड नहीं दे सकती.
Then she, that is the Brahma Kumari, will not be able to respond completely to the questions of that educated person.
तो उस एक के कारण सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की इज्जत चली जाती है.
So because of that particular one Brahma Kumari, all the Brahma Kumar Kumaris will lose their reputation. What?
दुनिया में और गुरु हुए हुए वो भी ज्ञान सुनाते रहे.
There have also been other gurus in the world. They too narrated knowledge.
प्रश्नों का समाधान करते रहे.
They gave solutions to the questions.
उन गुरुओं से भी कितने खुश हो जाते.
People used to become so happy with those gurus too.
वो तो झूठे गुरु. और यहाँ तो तुमको पढ़ाने वाला सच्चा बाप मिला है.
They are in fact false gurus and here you have found the true father who teaches you.
कोई कहे ये कैसे? तो ये ऐसे कि जो भी मज में लगते हैं गुरुओं के.
Someone may say, how can this be possible? So it is like this in the gatherings which are organized by the gurus.
अपने मजमे में कोई को प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते. और बाप?
They do not permit anyone to raise questions in their gatherings. And what about the father?
बाप कहते हैं तरीके से अगर ज्ञान में चलते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल सकता है और देते हैं.
The father says, if one follows the path of knowledge properly, then he can get answers to all the questions and he gives the answers.
बाप तो ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान कोई पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है.
The father is the ocean of knowledge. His knowledge is not bound in books.
वो गुरु लोग जो प्रश्नों का जवाब देते हैं वो शास्त्रों को पढ़कर के जवाब देते हैं या बिना शास्त्रों के पढ़े जवाब दे देते हैं?
Those gurus who give answers to questions, do they give the answers by reading from the scriptures or do they give the answers without reading the scriptures?
शास्त्र और किताब वो तो सीमित होती है. क्या उनकी सीमा है? और भगवान बाप जो सुनाते हैं उसकी सीमा नहीं है.
The scriptures and books are limited. What? There is a limit to that. And whatever Godfather narrates does not have any limit.
जैसे सागर की कोई सीमा नहीं, कितना गहरा है दुनिया में आज तक कोई जान नहीं सका, कोई वैज्ञानिक नहीं जान सका कि सागर की गहराई कितनी है.
Just as the ocean is limitless, nobody in the world has been able to fathom its depth till today. No scientist could know how deep the ocean is.
ऐसे ही भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उसके लिए तो कहा जाता है सारे जंगल की कलमें बनाओ और सारे सागर की स्याही बना दी जाए और उससे लिखा जाए तो भी ज्ञान खूटेगा नहीं.
Similarly for the knowledge that God comes and gives, it is said, if you make the entire forest into pens and if the entire ocean is made into ink, and if one writes with it, even then the knowledge will not finish.
Itana asim sagar hai gyan ka.
He is such an unlimited ocean of knowledge.
Koi acha padha likha, koi Brahma Kumari ke samne aa jaye aur wo pura respond nahi de sake, to sab Brahma Kumariyon ki izzat chali jayegi, kahenge ye to pura jawab bhi nahi de sakte.
So if a well educated person comes in front of a Brahma Kumari and if she is unable to give a full or satisfactory response, then all the Brahma Kumar Kumaris will lose their reputation. They will say they cannot even give a proper reply. They will say, what do these Brahma Kumar Kumaris explain?
फिर वो ऐसे ही बिना समझे चले जाएंगे. फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो जाता है.
देन दे विल गो अवे विदाउट अंडरस्टैंडिंग. द फर्स्ट इम्प्रेशन बिकम्स द लास्ट इम्प्रेशन.
ऐसे बहुत होते हैं और ये भी ड्रामा में नूंद है.
देर आर मेनी लाइक दिस एंड दिस इज ऑल्सो प्री डिटरमिंड इन द ड्रामा.
वो समझाने वाले अपन को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु ये तो बाप ही और अनन्य बच्चे ही जान सकते हैं.
Those who explain consider themselves to be very good, but it is only the father and the unique children who can understand.
बाबा का ख्याल था शिव जयंती पर बच्चों को समझाते रहे. कैसे तुम परिक्रमा निकालो क्या.
Baba had thought he should keep on explaining to the children on Shiv Jayanti how they should organize parikrama, that is a rally. What?
Parikrama nikalte hai na bhakti marg mein.
In the path of worship, they organize rallies, don't they?
To tum bachche bhi parikrama nikalo.
So you children should also organize a rally.
Kab aaya?
When did he come?
क्या करके किया.
What did he do after coming?
ये लोग देवताओं की मूर्ति को नहीं मानते.
These people do not believe in the idols of deities.
और तुम तो देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो.
And you are establishing the deity religion.
मानते हो तब तो स्थापना कर रहे हो.
You believe in it, therefore you are establishing it.
अभी तो अनेक धर्म है.
Now there are numerous religions.
तो कितने ढेर मत मतांतर टाल टारियां और टारियों की भी टारियां निकल गई.
Therefore, so many systems of opinions, branches and sub-branches and branches of the branches have also emerged.
अभी जार पूरा वृद्धि को पाया हुआ है.
Now the tree has grown completely.
और सभी टार टाली वाले, सभी धर्म मठ पंथ वाले अपने अपने नशे में हैं.
एंड द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस, ऑल द रिलीजियंस, ऑल द रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स हैव देयर ओन इंटॉक्सिकेशन.
कोई किसी की सुनता सुनता नहीं और जानते कुछ भी नहीं.
Nobody listens to anyone and they do not know anything.
अभी बाप आए हैं, तुम सब कुछ जान गए और तुम सब के ऑक्यूपेशन को जानते हो.
Now the father has come, you have understood everything and you know everyone's occupation.
जो भी बड़े बड़े आए इस दुनिया में, जिन बड़ों बड़ों की हिस्ट्री है, उनकी तुम लूप होल तुम जानते हो.
यू नो द लूप होल्स, दैट इज शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ऑल द बिग पर्सनैलिटीज हु हैव कम इन दिस वर्ल्ड, ऑफ ऑल द बिग पर्सनैलिटीज हुज हिस्ट्री एग्जिस्ट्स.
ये भी बाप ने समझाया है. kya?
The father has explained this also. What?
Shastron mein aur history mein Shankar ke baare mein bataya hai na? Hai? Kya bataya hai?
It has been mentioned about Shankar in the scriptures and in history, hasn't it? What has been mentioned?
Devadev, Mahadev kehte hai. Aur logon ko Bhagwan bhi samajhte hai.
He is called Devadev Mahadev and the people also consider him to be God.
फिर बाप बताते हैं शंकर भगवान है या देवता है? देवता है. भगवान तो नहीं है.
Then the father says, is Shankar God or a deity? He is a deity. He is not God.
भगवान अलग और देवता अलग.
God is different and a deity is different.
Shiva alag hai aur Shankar alag hai.
Shiv is different and Shankar is different.
Hai to Shankar bhi atma aur hai Shiv bhi atma. Fir antar kya hai?
Shankar is also a soul and Shiv is also a soul. Then what is the difference?
वो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है शिव और वो शिव इतना नहीं आ रहा है कि जब शंकर में प्रवेश करता है देहद का ज्ञान सुनाता है तो शंकर भी कैसी स्थिति धारण करता है.
He that is Shiv is beyond the cycle of birth and death and that Shiv is so unique that when he enters into Shankar, when he narrates the unlimited knowledge, then what kind of a stage does Shankar also assume?
Aisi nirakari, nirvikari, nirahankari stage dharan karta hai ki wo bhi janmana ke chakra se jaise nyara ho jata hai.
He assumes such nirakari, that is an incorporeal, Nirvikari, that is viceless, Nirankari, that is egoless stage, that he too becomes as if he is beyond the cycle of birth and death.
Ved ke roop mein nyara ho jata hai, had roop mein. Mana?
Does he become detached in an unlimited form or in a limited form? Someone said in an unlimited form. What does it mean?
और दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है.
All other human souls of the world pass through the cycle of faith and faithlessness.
जन्म मरण के चक्र में आती हैं.
They enter the cycle of birth and death.
परंतु भगवान शिव जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्र रूप से, वो आज से अंत तक जन्म मरण के चक्र अर्थात निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आता.
बट द वन इन हुम गॉड शिव एंटर्स इन अ परमानेंट मैनर डज नॉट पास थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मीनिंग द साइकिल ऑफ हैविंग फेथ एंड लूजिंग फेथ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड.
शंकर का कोई पार्ट नहीं है.
शंकर डज नॉट हैव अ पार्ट.
मना?
वॉट डज इट मीन?
पार्ट नहीं है.
इफ ही डज नॉट हैव अ पार्ट
तो हर हर महादेव क्यों कहा जाता है?
देन व्हाई इज ही कॉल्ड हर हर महादेव?
पापों को हरने वाला महादेव को क्यों कहा जाता है?
व्हाई इज महादेव कॉल्ड द वन हु टेक्स अवे द सिंस?
बाप जवाब देते हैं कि हर हर महादेव वो अभी मैं ही हूँ.
The father replies, it is I who am Har Har Mahadev too.
पाप काटने वाला शंकर नहीं है. अगर शंकर ही पाप काटने वाला होता तो याद में क्यों बैठता है?
शंकर इज नॉट द वन हु बर्न्स takes away sins. If Shankar was the one who burns the sins, then why would he sit in remembrance?
चित्तों में याद में बैठा हुआ दिखाते हैं ना?
He is shown to be sitting in remembrance in the pictures, isn't he?
किसकी याद में बैठा है?
In whose remembrance is he sitting?
जरूर शिव की याद में बैठा है.
Certainly, he is sitting in the remembrance of Shiv.
इसलिए जो पुराने पुराने शिव के मंदिर हैं, उनमें बीच में शिव की यादगार शिवलिंग दिखाते हैं और बाजू में चारों देवताओं की मूर्तियां दिखाते हैं.
That is why in the old temples of Shiv, a memorial of Shiv, that is Shivling, is shown in the center, and next to it the idols of deities are shown all around.
उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं.
Among them, the idol of Shankar is also shown in an important place. He is immersed in meditation.
किसकी याद में बैठी है? जरूर कहेंगे सिर्फ बाप की याद में बैठी है.
In whose remembrance is he sitting? Certainly, it would be said that he is sitting in the remembrance of Father Shiv.
तो ऐसे नहीं है कि शिव बाप उनको कहेंगे.
So it is not that Father Shiv will tell him.
किसको? शंकर को, कि बैठ करके सबको मार डालो.
Who? Shankar, to sit and kill everyone.
ऐसे कहते हैं क्या? नहीं.
Does he say like this? No.
कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या कहने?
It is said, what is famous in the path of worship?
कि शंकर की आँख खुलने से ही प्रलय हो जाती है.
That as soon as Shankar opens his eyes, the flooding of the earth takes place.
तीसरा नेत्र खुला और सारी दुनिया में प्रलय हो जाती है.
As soon as the third eye opens, the entire world gets flooded.
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की दुनिया ही क्या हो जाती है? खलास हो जाती है.
What happens to the world of lust, anger, greed, attachment and ego? It ends.
इस दुनिया में कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी नहीं बचेंगे.
The ones having lust, the ones with anger, the greedy, those with attachment, the ones with ego will not survive in this world.
कौन बचेंगे? कौन बचेंगे?
Who will survive?
जो स्वस्थिति में स्थित होने वाले निराकारी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले देवताएं देवी स्वभाव के होंगे वो ही बचेंगे और बाकी सब सब खलास हो जाएंगे.
Only the deities who become constant in the stage of the true self, those who become constant in the incorporeal soul conscious stage, those who possess a divine nature will survive and the remaining people will get destroyed.
तो क्या शंकर आंख खोलते हैं तो सबको खलास कर देते हैं?
So when Shankar opens his eye, does he destroy everyone?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई तीसरा ऐसा नेत्र होता है जिसमें से विनाश की ज्वाला निकलती है और उसमें सब भस्म हो जाते हैं.
नो, इट इज नॉट ट्रू दैट देर इज एनी सच थर्ड आई फ्रॉम विच द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन इमर्जेस एंड एवरीवन गेट्स बर्न्ड.
कितना झूठ बोलते हैं और कितना चित्रों में झूठ दिखाया है.
They speak so much lies and so much that is false has been shown in the pictures.
झूठ माने झूठ, गीता में ही झूठ लिख दिया है.
Falsehood means just falsehood. Lies have been written in the Gita itself.
ज जब भगवान वासी ही रंग कर दिया है तो बाकी सभी रंग हो जाता है.
When the words of God Himself have been made to be wrong, then everything else becomes wrong.
अभी तुमको रात दिन इसी बात पर विचार सागर मंथन करना है.
Now you must think and churn only on this matter day and night.
इस बात पर.
On which matter?
गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ या कृष्ण को कहा जाए.
Should शिव शंकर भोलेनाथ be called God of the Gita or should Krishna be called God of the Gita?
इस एक बात में तुम्हारी विजय होनी है.
Your victory lies in this one matter.
वेद के बाप की बायोग्राफी और बच्चे की बायोग्राफी में रात दिन का फर्क है.
There is a difference of day and night between the biographies of the unlimited father and of the child.
Yeah?
What?
वेद का बाप कौन?
Who is the unlimited father?
और वेद का बच्चा कौन?
And who is the unlimited child?
आत्मिक रूप में वेद का बाप कौन?
In a spiritual form, who is the unlimited father?
Shiva. वेद का बाप है.
शिव इज द अनलिमिटेड फादर.
और शंकर है वेद का बच्चा आत्मिक स्थिति के रूप में.
एंड शंकर इज द अनलिमिटेड चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल स्टेज.
और साकार सृष्टि जब होती है तो साकार सृष्टि में मनुष्यों का पिता कौन?
एंड व्हेन देयर इज अ कॉर्पोरियल क्रिएशन then who is father of the human beings in the corporeal world?
Prajapita. Aur uska bachcha kaun hai?
Prajapita. And who is his child?
Sangam yug mein kahenge titledar hi Prajapita Brahma.
In the conference age it will be said the title holder Prajapita Brahma.
Fir satyug sakar srishti mein kaun baap और कौन बच्चा?
Then in the corporeal world, in the golden age, who is the father and who is the child?
बाप कहा जाता है बीज को.
The seed is called the father.
तो मनुष्य सृष्टि का साकारी बीज कौन हुआ?
So who is the corporeal seed of the human creation?
प्रजापिता कहो नारायण कहो बाप तो एक ही है.
कॉल हिम प्रजापिता और कॉल हिम नारायण इट इज वन एंड द सेम.
इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण.
दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण.
कौन सा कृष्ण? संगम युगी कृष्ण. नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता. नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण.
विच कृष्ण? द कॉन्फ्लेंस एज्ड कृष्ण. Next to God is Prajapita. Next to God is Narayan.
तो एक ही पर्सनालिटी के ये अलग अलग नाम बताए. ये अलग अलग पर्सनालिटीज पर्सनालिटी तो एक ही है.
So are these different names for the same personality or are they different personalities? The personality is the same.
फिर देखो शास्त्रों में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया कि कृष्ण बच्चे ने गीता सुनाई.
Then look in the scriptures the name of the child has been inserted in place of the father saying that the child Krishna narrated the Gita.
बाप कहते हैं तुम तो महामूर्ख बन गए.
The father says you have become the greatest of fools that is महामूर्ख.
तुमको ये भी समझ नहीं है कि गीता का भगवान कौन है.
You do not even understand this as to who is the God of the Gita.
Yeah? Oh, sorry.